शांति। आप सभी भी बोलिए ओम शांति। आपने पिछले सत्रों में आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का सत्य ज्ञान और काल चक्र में आत्मा के 84 जन्मों की कहानी के विषय में समझा। ऐसे ही जितना राजयोग में आत्मा के ज्ञान का महत्व है, परमात्मा के ज्ञान का महत्व है, क्योंकि उसके आधार पर ही हम उस संबंध को अनुभव करते हैं। इतना ही कर्मों का भी महत्व है। संसार कर्म क्षेत्र है, कहते हैं सृष्टि एक बेहद विशाल रंगमंच है और सभी आत्माएं शरीर धारण कर इस कर्म क्षेत्र में कर्म कर रही हैं। तो हम पहले समझेंगे कर्म क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है, कितने प्रकार के कर्म हम करते हैं और उन कर्मों के परिणाम क्या होते हैं और कौन से कर्म हमें सफलता दिलाते हैं। शरीर में कर्म इंद्रियां है ही कर्म करने के लिए। आंख का कर्म है, आंख की क्रिया क्या है, क्या कहेंगे, देखना। कान का कर्म है, मुख का कर्म है, हाथ का कर्म है, कार्य करना। तो कर्मेंद्रियां हैं तो कर्म होगा ही, हम कर्म सन्यासी तो नहीं हो सकते। आंखें हैं तो देखने का कर्म होता ही रहेगा, कान है तो सुनने का कर्म होता ही रहेगा, लेकिन कर्म का स्वरूप बनता है उस क्रिया के पीछे जब वृत्ति और भाव जुड़ जाते हैं। हम सभी देख रहे हैं लेकिन सबके देखने का भाव अलग अलग हो सकता है। अगर मेरे देखने में प्रेम का भाव है या मेरे देखने में गुस्से का भाव है, हाँ, या किसी की बुरी नजर भी होती है, तो कर्म का परिणाम बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्या कहेंगे। देखने का कर्म समान है, सभी देख रहे हैं, लेकिन जैसा भाव उस कर्म के पीछे जुड़ता है वैसे ही कर्म का स्वरूप बन जाता है। तो यदि हमारी शुद्ध दृष्टि है, शुद्ध भाव है, तो वो पुण्य कर्म हो जाता है, और यदि बुरी दृष्टि है, बुरा भाव है, तो वही पाप कर्म हो जाता है। देखने की क्रिया समान है, तो कर्म का स्वरूप भाव जुड़ने से बदलता है। कई बार हम ये प्रश्न करते हैं कि हम सभी तो एक जैसा कर्म कर रहे हैं, हम भी इनके समान ही इतनी मेहनत करते हैं, इनको तो बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है, तो हम महसूस करते हैं कि इनके ही जितनी मेहनत हम करते हैं, इतना ही कार्य हम करते हैं, लेकिन ये जल्दी सफल हो जाते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं, या हमें असफलता मिलती है, हमारे कार्य की प्रशंसा नहीं होती है। ऐसे कितने सवाल हमारे मन में हो सकते हैं अपने कार्यों के प्रति, लेकिन अंतर है, अगर किसी को जल्दी सफलता मिल रही है तो उसने जरूर उस कार्य को उतने उमंग उत्साह से किया है, उतने श्रेष्ठ भाव से, लगन से उस कार्य को किया है, और वही कार्य करते हुए अगर मुझे सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब मैंने उस काम को उतने श्रेष्ठ भाव से नहीं किया है, उतने लगन से मैंने उसे नहीं किया है, तो परिणाम में अंतर स्वतः ही हो जाता है। और क्योंकि आत्मा इस शरीर के माध्यम से कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराती है, तो आत्मा ही कर्म के लिए जिम्मेवार है। आत्मा पर ही कर्म का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। यदि हमने अच्छे कर्मों का बीज बोया है तो अच्छा ही फल मिलेगा, और यदि बुरे कर्मों का बीज बोया है तो उसका फल भी बुरा ही होगा। यानी आत्मा अपना ही मित्र है और आत्मा अपना ही शत्रु है। लेकिन कहीं कहीं हमारे शास्त्रों में आज तक हम सुनते आए हैं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा पर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, शरीर ही कर्मों से प्रभावित होता है। लेकिन आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है और एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन दोषी है? गाड़ी दोषी है, ड्राइवर दोषी है? क्या कहेंगे? ड्राइवर दोषी है, क्योंकि ड्राइवर चेतन है, उसके निर्णय के कारण ही। हो सकता है कि गाड़ी में कोई दोष हो जाए, ब्रेक फेल हो जाए या कुछ भी उसका सिस्टम खराब हो जाता है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ या ड्राइवर की गलती से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन फिर भी पेनल्टी किसको भरनी होगी या सजा किसको मिलेगी? ड्राइवर को मिलेगी। तो ये शरीर जड़ है और आत्मा जो भी कर्म इसके माध्यम से करती है उसका फल आत्मा को भोगना है। इसलिए हम पापात्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा, आत्मा के लिए हम कहते हैं। पाप शरीर, पुण्य शरीर, महान शरीर हम नहीं कहते। कई बार मनुष्य कर्म के परिणाम के कारण जो दुख भोगते हैं तब ऐसा कहते हैं कि इस संसार में दुख भोगने से तो अच्छा है हमें मुक्ति मिल जाए, सदा के लिए मोक्ष मिल जाए। आप में से भी कोई ऐसे हैं जो ये समझते हैं इस संसार के चक्र में रहने से तो अच्छा है हमें सदा के लिए मोक्ष मिल जाए? यदि हैं तो हाथ उठाइए। मोक्ष की इच्छा रखने वाले ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें अपने जीवन में जो हमें मोक्ष मिल जाए। तो मोक्ष पाने का या मोक्ष की इच्छा करने का कारण है कि हम ये समझते हैं ये संसार दुख रूप है, इस संसार में सदा ही दुख है और हम दुखों से मुक्ति चाहते हैं। जो सुखी हैं क्या वो मोक्ष की इच्छा करते हैं? आप में से 75% से 80% से ज्यादा भाई बहनों ने हाथ नहीं उठाया, केवल 10% ने हाथ उठाया। तो इसका मतलब यहाँ सुख महसूस करते हैं तभी यहाँ रहना चाहते हैं। तो ये संसार सदा दुख रूप नहीं है, इसमें ज्यादा समय सुख है और बहुत कम समय दुख है। आपने आज काल चक्र के विषय में सुना कि परमात्मा ने जो सृष्टि रची, गॉड क्रिएटेड मैन हिज इन ओन इमेज, तो उसने मनुष्य को देवता के रूप में रचा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाया। वो सतयुग की सृष्टि संपूर्ण सुखों की सृष्टि थी, और आधा युग, इस काल चक्र का आधा समय सतयुग त्रेता 2500 साल तक इस संसार में संपूर्ण सुख होता है, जहां दुख का नाम निशान तक नहीं होता। और उसके बाद भी जब दुख शुरू होता है तो इतना नहीं होता, ये तो कलयुग के अंतिम समय में आते आते दुख की वृद्धि होती है। जब मनुष्य आत्माएं परमात्मा को पुकारना शुरू करती हैं और फिर मोक्ष की इच्छा करती हैं, और मानो आत्मा को मोक्ष मिल भी जाए, अगर उसे मुक्ति मिल भी जाती है तो भी आत्मा में कर्म करने के संस्कार हैं, तो वो कर्म किए बिना रह नहीं सकती, वो फिर से सृष्टि पर आना चाहेगी। मानो किसी का एक्सीडेंट होता है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, उसको डॉक्टर अस्पताल में भर्ती करते हैं और कहते हैं कि 3 हफ्ते तक या 1 महीने तक आपको बिल्कुल बिस्तर से उठना नहीं है, तो वो अस्पताल में शुरू में तो अच्छा महसूस करते हैं कि बिल्कुल हाथ में खाना मिलता है, सब इतनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते के बाद बोर हो जाते हैं और फिर क्या सोचते हैं, कब ये प्लास्टर खुलेगा और कब हम चलना शुरू करेंगे, फिर एक एक दिन गिनते हैं। तो ऐसे ही आत्मा को भी मुक्ति सदा पसंद नहीं आती है, थोड़ा समय मुक्ति अच्छी लगती है, पर क्योंकि फिर आत्मा में कर्म करने का संस्कार है, फिर से वो इस संसार में आकर कर्म करना चाहती है और इसीलिए आत्मा सृष्टि पर आती है, सदा काल के लिए उसे मोक्ष नहीं मिलता है। और तीसरी बात, हम ये समझते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों के चक्र में घूमती है। आप सभी ने भी ये सुना होगा कि मनुष्य आत्मा एक जन्म मनुष्य के रूप में पाती है, जो उसके पुण्य कर्मों का फल है और दुर्लभ है, और बाकी के सभी जन्म वो इतनी जो संसार में योनियां हैं, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सर्प, ये सब योनियों में चक्र लगाती है, तो हम उन योनियों में नहीं जाना चाहते। अब यदि मानव जीवन मिला है तो इस योनियों के चक्र से मुक्ति हो जानी चाहिए। पर शिव बाबा जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, परमात्मा शिव, तो वो हमें ये सत्य समझाते हैं, मनुष्य आत्मा अनेक योनियों के चक्र में नहीं जाती, वो काल चक्र में जरूर जन्म पुनर्जन्म लेती है, लेकिन मनुष्य मनुष्य के रूप में ही जन्म लेता है। मनुष्य जाकर के पशु पक्षी या अन्य निकृष्ट योनि में जन्म नहीं लेता है, ये प्रकृति का नियम है, जैसा बीज होता है वैसा ही फल है। यदि हमने आम का बीज बोया है तो हमें आम ही मिलने वाला है, भले उसमें समय लग सकता है, लेकिन आम के बीज से हमें कभी नारियल नहीं मिल सकता। मिल सकता है, आम का बीज आपने बोया और आप आशा करें कि इससे मुझे नारियल मिलेगा, नहीं मिल सकता है। विज्ञान भी अगर प्रयास करती है, आज अनेक विज्ञान में तकनीक है, अनेक अनुसंधान है जिससे कि बीजों को उन्नत किया जाता है, आज वो खट्टे आम से मीठा आम बना सकते हैं, छोटे आम से बड़ा आम बना सकते हैं, हरे को वो पीला बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आम को नारियल तो नहीं बना सकते, उसकी प्रजाति को नहीं बदला जा सकता, लेकिन आम को उन्नत किया जा सकता है। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन का जो बीज है वो मनुष्य आत्मा है, और वो मनुष्य आत्मा जब पुनर्जन्म लेती है तो वो मनुष्य के रूप में ही लेती है। रही कर्मों के फल की बात, हमारे शास्त्रों में कहा गया कि अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरी योनि में जाकर जन्म लेना पड़ेगा, तो ये मनुष्य में भय उत्पन्न करने के लिए कहा गया, ताकि वो बुरे कर्मों से बचे। लेकिन बुरे कर्मों का फल भी हम मनुष्य योनि में ही भोगते हैं। आज 4 प्रकार के भाग्य मनुष्य के जीवन में माने जाते हैं, तन मन धन और संबंध। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, ये तन का सुख है, मन का सुख है, मन सदा सदा प्रसन्न और संतुष्ट रहे। धन का सुख है, सदा धन इतना अवश्य हो कि हमारी सभी आवश्यकताएं सहज रूप से पूरी हो जाएं। संबंधों का सुख है कि संबंध सभी निस्वार्थ स्नेह देने वाले हों। तो क्या ये चारों सुख मनुष्य के जीवन में है? नहीं। हरेक मनुष्य को कोई ना कोई दुख है, और जब वो उस दुख को महसूस करता है तब वो सोचता है कि मेरे कौन से ऐसे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। तो कर्मों के परिणाम स्वरूप मनुष्य की पशु जैसी गति हो सकती है। आज एक भिखारी है, भीख मांगता है, उसे जो कोई खिलाता है वही वो खाता है, और उसी गली में एक कुत्ता भी घूमता है, उसको भी जो कोई खिलाता है वो खाता है, तो उस भिखारी के जीवन की गति उस पशु जैसी है। हालांकि वो पशु है नहीं, और एक व्यक्ति महल में जन्म लेता है, एक बच्चा किसी राजा के घर में महल में जन्म लेता है, जन्मते ही वो राजकुमार है, उसे सभी वैभव उपलब्ध हैं, वो राजाई जीवन जीता है, तो वो भी उसके श्रेष्ठ कर्मों का फल है। और यदि किसी की पशु जैसी गति होती है तो भी उसके वो कर्मों का फल। कई बार हम देखते हैं बच्चे जन्म लेते हैं, जन्मते ही अपंग होते हैं, दिमाग से कमजोर होते हैं, कोई जन्मजात बीमारी लिए हुए पैदा होते हैं। अब 84 लाख योनि का चक्र यदि मान लिया जाए और उसमें से आत्मा घूम करके ये एक मानव जन्म ले रही है, और वो मानव जन्म भी जिसमें उसने अभी कोई कर्म ही नहीं किए, अभी तो सिर्फ जन्म ही हुआ है, वो ऐसा क्यों? फिर जिन माता पिता के घर में वो जन्म लेती है उसके साथ वो माता पिता भी उतने ही दुखी होते हैं। यदि जन्म लेने वाली संतान दुखी है तो माता पिता भी उसके साथ उतने ही दुखी होते हैं। तो इसका मतलब मनुष्य योनि में ही हम कर्मों का फल भोग रहे हैं। फिर कई बार पुनर्जन्म की कुछ घटनाएं समाज में सामने आती हैं। जब छोटे छोटे बच्चे अपने पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं तो उसके ऊपर काफी अध्ययन किए गए हैं। ये देखा गया कि वो बच्चे कभी ये नहीं कहते कि मैं पूर्व जन्म में गधा था, घोड़ा था या ये जानवर पक्षी था। वो हमेशा कहते हैं मैं फलाना था, मेरा घर वहां था, मुझे उनसे मिलना है, और उनके नाम तक भी कई बार वो बताते हैं। और जब उनको उस स्थान पर ले जाया जाता है तो वो सचमुच सही निकलता है। ऐसे ही एक और विधा है विज्ञान में जिसे सम्मोहन विद्या कहते हैं, हिप्नोटिज्म कहते हैं, जिसमें डॉक्टर मरीज की बीमारी का इलाज करने के लिए उसे हिप्नोटाइज करके पूर्व जन्म की स्मृतियों तक ले जाते हैं। ये विदेशों में बहुत प्रचलित है, भारत में ये इतना प्रचलित नहीं है। तो वहां पर जब इसका प्रयोग किया जाता है तो ये देखा जाता है कि जब वो पूर्व जन्म की स्मृति में जाते हैं तो भी वो मनुष्य जीवन की ही कहानी सुनाते हैं कि उनके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में उनको ये दुख महसूस हो रहा है। कई लोगों को ऊंचाई पर जाने से डर लगता है, किन्हीं लोगों को पानी में जाने से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को कार में बैठने से डर लगता है। तो ये देखा गया कि पूर्व जन्म में उनकी मृत्यु जिस कारण से हुई होती है, यदि वो आग से जलकर मरे हैं तो इस जन्म में उनको आग से भय होता है, यदि वो पानी में डूबकर मरे हैं तो इस जन्म में उनको पानी से भय होता है, अगर वो ऊंचाई से गिरकर मरे हैं तो इस जन्म में उनको ऊंचाई से भय होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य के रूप में ही जन्म लेती है, और इसीलिए कर्मों का फल भी हम यहां ही भोगते हैं। तो ऐसे नहीं कि एक ही मानव जन्म मिला है और हम अनेक योनि में नहीं जाना चाहते, इसीलिए हमें मोक्ष चाहिए। फिर आत्मा की अभिव्यक्ति भी जो होती है वो शरीर के माध्यम से है। जो भी वो कर्म कर रही है उसके लिए शरीर साधन तो चाहिए ही चाहिए। आज एक डॉक्टर है, अगर वो सर्जन है, उसे ऑपरेशन करना है तो उसे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, उसे वो ऑपरेशन थिएटर चाहिए जहां पर वो कार्य कर सकता है। अगर एक म्यूजिशियन है तो उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अगर एक पेंटर है तो उसे पेंटिंग के लिए पूरे कलर्स चाहिए, तभी जाकर के वो अभिव्यक्ति वो कर पाएंगे, वो कार्य वो कर पाएंगे। ऐसे ही आत्मा को भी संसार में कर्म करना है तो उसके लिए ये माध्यम आवश्यक है, शरीर के माध्यम से ही वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकती है। फिर आत्माएं जब संसार में कर्म करती हैं तो उसमें चार प्रकार के कर्म पूरे काल चक्र में आत्मा के द्वारा होते हैं। वर्तमान समय जो अधिकतर कर्म होते हैं वो पाप कर्म है। पाप कर्म की परिभाषा है जो कर्म देह अभिमान के वश किया जाए। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, यानी पाप की जो जड़ है वो अभिमान है। जो भी कर्म मैंपन के वश होकर के किए जाते हैं, मैंपन की वृत्ति से, हमने आपको समझाया कर्म के पीछे जैसी वृत्ति या भाव होता है वैसे ही कर्म का स्वरूप बनता है। तो मैं करता हूं, मेरी जिम्मेवारी है, मैंने किया, हमेशा ही हम कलयुग में इस वृत्ति से ही कर्म करते हैं, यानी देह अभिमान वश ही हमारे कर्म होते हैं। और इसीलिए जो पाप दिखाई देने वाले कर्म नहीं भी हैं वो भी पाप कर्म के खाते में हो जाते हैं। हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें वो पाप कर्म नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन क्योंकि हम देह अभिमान वश उसे कर रहे हैं तो वो पाप कर्म के खाते में जाता है। फिर हम सोचते हैं मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया, मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, प्रश्न उठता है ना। लेकिन हमें पता नहीं कि अज्ञान वश अनजाने में हम वो पाप कर्म कर रहे हैं। हम सोचते हैं झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना सिर्फ यही पाप है, मैंने झूठ बोला नहीं, मैंने चोरी की नहीं, मैंने किसी की हत्या की नहीं तो मेरा पाप नहीं किया। लेकिन यहां भी हमें कर्म के स्वरूप को समझना होगा कि वास्तव में क्या झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना पाप है, किस समय स्थान स्थिति के अनुसार वो पाप कर्म बनता है। तो यदि हम कई बार सच बोलते हैं लेकिन उससे किसी का यदि नुकसान होता है, सच बोलने से किसी का बुरा हो जाता है, वो भी पाप कर्म हो जाता है। तो कई बार सच बोलना झूठ बोलने से ज्यादा पाप हो जाता है। एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक गाय भागी हुई जा रही थी और एक साधु ने उसे देखा कि गाय भाग के जा रही है। वो गाय गली में घुसी, पीछे ही झल्लाद था जिसे उस गाय का कत्ल करना था। तो उसने झल्लाद को देखा और वो समझ गया कि गाय क्यों भाग रही थी। झल्लाद ने उसको पूछा, क्योंकि वो साधु सामने दिखाई दिया, तो पूछा यहां से एक गाय गुजरी है, किस दिशा में गई। हाँ, अब वो धर्म संकट में पड़ गया कि यदि मैंने उसको बताया ये इस गली में गई है तो ये झल्लाद उसको मारेगा, और अगर वो गाय को मार दिया गया तो गो हत्या का पाप मुझ पर लगेगा, और अगर सच नहीं बताता हूं तो भी पाप लगेगा। तो उसने कहा कि मैं, मुझे नहीं मालूम गाय किस दिशा में गई, जबकि उसे मालूम था लेकिन फिर भी उसने झूठ बोला। तो ये झूठ गाय के जीवन बचाने के लिए उसने कहा, तो ये कम पाप कर्म हुआ। तो मानो किसी के कल्याण के लिए यदि हम झूठ बोलते हैं, कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि सचमुच झूठ बोलने से किसी का भला होता है, तो वो झूठ उतना बड़ा पाप नहीं है। उस समय स्थान व्यक्ति के अनुसार उस कर्म की परिभाषा, किस भाव से मैंने वो कर्म किया। लेकिन यदि मेरे स्वार्थ के लिए मैंने झूठ बोला, अपना नाम बचाने के लिए मैंने झूठ बोला, कई बार ऐसा होता है मेरे से गलती हो गई लेकिन अपने आप को बचाने के लिए हम झूठ बोलते हैं। कई बार बच्चे झूठ बोलते हैं माँ बाप के सामने, और फिर माँ बाप को पता भी होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो बच्चे अपने को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, माँ बाप गुस्सा करते हैं। तो यहां पर दोनों का ही पाप बनता है कि बच्चे ने क्यों झूठ बोला, क्योंकि उसको पता है कि यदि मैंने सच बोला तो मेरे पिता नाराज होंगे, हो सकता है कि मुझे एक थप्पड़ भी लगा दिया जाए तो अपने आप को उस थप्पड़ से गुस्से से बचाने के लिए वो झूठ बोल देते हैं। लेकिन क्योंकि आपके भय के कारण उसने झूठ बोला, आप निमित्त बने, आपका भी पाप बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कर्मों की गति बहुत गहन है, उसको एक साधारण मनुष्य इतना सहज रूप से नहीं समझ सकता है। और यदि हम कहते हैं हत्या करना पाप है, अब बॉर्डर पर एक सिपाही की नौकरी लगी हुई है और उसकी ड्यूटी ही है कि यदि कोई दुश्मन आपको दिखाई देता है सीमा पर तो क्या करो, क्या करो, आने दो उसको या गोली मारो। तो अब यहां अगर वो हत्या नहीं करता है तो ज्यादा पाप हो जाएगा, क्योंकि उसका कर्तव्य है, उसकी उसकी नौकरी ही है कि यदि कोई दुश्मन देश में आता है तो उसको उसे समाप्त कर देना है। तो समय स्थान व्यक्ति के अनुसार उस कर्म की परिभाषा बदल गई कि मैंने उसे किस भाव से किया है, भले ही फिर वो देखने में कर्म बुरा ही क्यों ना हो। तो पाप कर्म जो है वो एक तो देह अभिमान के वश किए जाते हैं, दूसरा पाप कर्म जो विकारों के वश किए जाते हैं वो भी पाप कर्म के खाते में जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, हसद, छल, कपट, ये भाव मन में आते हैं और यदि हम कर्म करते हैं तो वो सभी कर्म पाप कर्म बनते हैं। तीसरा स्वार्थ वश जो हम कर्म करते हैं वो भी पाप कर्म होते हैं। और चौथा, अगर हम ईश्वर से विमुख कराने वाले कर्म करते हैं तो वो भी पाप कर्म के खाते में जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके वश आज पूरे कलयुग में कर्म हो रहे हैं। काम विकार की तो आज अति है, हम सभी जानते हैं कि आज दुनिया की क्या स्थिति है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, काम का अति रूप जो है वो बलात्कार है। और भारत में पिछले वर्ष ही इस बात को लेकर के कितने आंदोलन हुए और अब तक भी वो घटनाएं थमती नहीं हैं, ऐसे अपराध और बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे ये अति रूप में जो जा रहा है ये भी कलयुग का अति रूप है। फिर दूसरा क्रोध के वश, क्रोध के वश भी आज कितनी हम अपशब्द की बातें, दूसरों को दुख देने वाली बातें, ये सब हम करते हैं, निंदा, ग्लानी, लेकिन उसका चरम रूप है हत्या कर देना। गुस्से में आकर के मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूं, और कई बार उसकी चरम स्थिति ये होती है कि दूसरे को जान से भी वो खत्म कर देते हैं। आज अनेक देश इतने हथियार बना रहे हैं, परमाणु अस्त्र इतने जमा कर रहे हैं, उसका भी कारण है क्रोध। जो भी लड़ाई, झगड़ा, कलह होती है उसका भी कारण है क्रोध। तो क्रोध के वश होकर के कितने पाप कर्म होते हैं। लोभ के वश हम देखते हैं, आज इतनी काला बाजारी है, मिलावट है, भ्रष्टाचार है, अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं। कहते ना, इंसान को अपने पेट भरने के लिए ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसे अपना बैंक बैलेंस बनाना है, उसे अपने अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना, क्या कहेंगे, फिर कितना चाहिए, फिर तो उसका कोई अंत ही नहीं, फिर करोड़ों जमा कर लो या अरबों जमा कर लो। आज के जो पॉलिटिशियन हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही उनको सीट मिलती है पूरी कोशिश करते हैं, पता नहीं अगले 5 साल हम होंगे या नहीं होंगे, जितना जमा करना चाहो अभी ही जमा कर लो। और उसके कारण कितना शोषण जनता का होता है, कितना वो जनता को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर अगर हम मोह के वश देखते हैं तो आज के समय में भाई भतीजावाद अपने चरम पर है। जो मेरे हैं, जिनको हम मेरा समझते हैं, पहले हम उनको हर उसमें, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो एडमिशन है, उसमें हम उनको प्राथमिकता देते हैं। फिर चाहे उसके कारण योग्य व्यक्ति जो है वो रह जाता है, जहां मेरा पन है, हाँ ये मेरा है, ये मेरा अपना है, दूसरों को हम अपना नहीं समझते। अहंकार के कारण हम सभी जानते हैं, हाँ, कितना हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर इसके साथ साथ जो जाति, धर्म, भाषा, देश के नाम पर भेदभाव वश व्यवहार होता है, वो भी पाप कर्म के खाते में जमा होता है। तो जो भी पाप कर्म है उसका परिणाम आता है तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख और संबंधों का दुख। परिणाम मिलता है दुख के रूप में। तन में कोई ना कोई रोग लगा रहेगा, बीमारी लगी रहेगी, तन से परेशान होते रहेंगे, मन से कभी भी जीवन में खुश नहीं होंगे, असंतुष्ट रहेंगे, ये मन का दुख है, शांति नहीं होगी मन में। आज के इंसान के लिए क्या कहते हैं, सब कुछ है लेकिन शांति ही नहीं है। धन की खींचातान लगी रहेगी हमेशा, और संबंधों में कोई ना कोई परेशानी, कष्ट, वो भी बना रहता है। तो जरूरी नहीं है सबको ये चारों प्रकार के दुख होते हैं, हाँ किसी को कोई दुख होता है, किसी को कोई दुख होता है, लेकिन ये कलयुग में पाप कर्म होने के कारण किसी ना किसी रूप में हम दुख भोगते हैं। और दूसरे प्रकार के जो कर्म हैं पाप कर्म के बाद, हम कहते हैं सत्कर्म। वो सत्कर्म पाप कर्म के बिल्कुल विपरीत कर्म है। पाप कर्म देह अभिमान के वश किए जाते हैं, लेकिन सत्कर्म आत्मिक स्थिति में, आत्मिक दृष्टि से परमात्मा की श्रीमत अनुसार वो कर्म किए जाते हैं। आपने कालचक्र के विषय में समझा, वर्तमान समय कौन सा समय है, कौन सा समय है, किसको याद है वर्तमान समय कौन सा समय चल रहा है? संगम युग का समय चल रहा है, और इस संगम युग पर निराकार परमात्मा शिव स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होकर के मनुष्य आत्माओं को पुनः ज्ञान और योग की शिक्षा देकर के सत्कर्म करना सिखाते हैं। तो जो कर्म परमात्मा की याद में आत्मिक भाव से, आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक वृत्ति से किए जाते हैं, वो कर्म सत्कर्म होते हैं, और उन कर्मों का फल एक का पदम गुना होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि दुनिया में भी जो बीज होते हैं वो हरेक बीज अलग अलग प्रकार से फल देते हैं। मानो हमने अगर गोभी का बीज बोया है तो एक गोभी के बीज से एक गोभी का फूल हमें मिलता है, लेकिन यदि हमने एक टमाटर का बीज बोया है तो एक टमाटर के बीज से हमें अनेक टमाटर मिलते हैं और अनेक बीज भी मिलते हैं, लेकिन एक सीजन। अगर हमें दूसरी फसल चाहिए तो फिर हमें दोबारा वो फसल बोनी होती है, चाहे फिर हम वो गेहूं बोते हैं, बाजरा बोते हैं, जो भी फसल हम बोते हैं वो एक बीज से हमें अनेक बीज मिलते हैं। लेकिन यदि हमने नारियल का बीज बोया तो फिर हमें इंतजार करना पड़ता है, या हमने आम का बीज बोया तो हमें इंतजार करना पड़ता है, तुरंत हमें फल नहीं मिलता, वर्षों इंतजार करने के बाद वो फल हमें मिलता है, लेकिन फिर वो फल सदा ही मिलता है, हम ही नहीं खाते, वो पीढ़ियां भी खाती हैं, आप उसकी गिनती नहीं कर सकते, इतना फल हम उससे पाते हैं। तो सत्कर्म से प्राप्त होने वाला फल ऐसा फल है कि तुरंत हमें वो फल नहीं मिलता है, लेकिन जो प्राप्ति होती है वो एक जन्म नहीं, इस केवल वर्तमान जन्म के लिए नहीं, लेकिन आने वाले 21 जन्मों तक आत्मा उन सत्कर्मों का फल प्राप्त करती है। जो सतयुग और त्रेता की प्रारब्ध है वो वर्तमान संगम युग पर परमात्मा की श्रीमद अनुसार किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप वो प्रारब्ध हमें प्राप्त होती है। दूसरा सत्कर्म ईश्वर की मत के अनुसार निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म, जो निर्विकारी स्थिति में कर्म किए जाते हैं, जिसमें विकार का अंश मात्र भी नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त कर्म हम सत्कर्म कहते हैं, और वो केवल वर्तमान संगम युग के समय पर ही संभव है। पूरे काल चक्र में और किसी युग में हम सत्कर्म नहीं करते, क्योंकि परमात्मा संगम युग पर ही अवतरित होते हैं, उनकी श्रीमत हमें संगम युग पर ही मिलती है, और आत्मिक स्थिति में वो कर्म इस वर्तमान समय ही किए जाते हैं जो हमें जन्मों की प्रारब्ध देने वाले होते हैं, और वो हमें तन, मन, धन, संबंध चारों प्रकार का सुख देते हैं। पाप कर्मों का परिणाम होता है दुख, और पुण्य अर्थात सत्कर्म का परिणाम हुआ सुख। तो सतयुग में आत्मा तन से संपूर्ण सुखी होती है, निरोगी काया है, मन शांत और प्रसन्न है, इतना अधिक कि देवताओं के मंदिर बनाकर आज हम पूजा करते हैं तो उनकी मूर्ति भी सुख देती है ना। मूर्ति के दर्शन मात्र से ही क्या मिलता है, मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं ना, तो देवताओं के दर्शन से सुख मिलता है, शांति मिलती है, तो वो मानसिक रूप से स्वयं इतने सुख शांति में रहे कि आज उनके चित्र भी सुख देते हैं। धन का सुख इतना कि आज भी किसी देवता का मंदिर बनाते हैं तो बहुत वैभवशाली तरीके से बनाते हैं, यानी धन मिट्टी के समान है, वहां सोने चांदी के महलों में वो रहते हैं। और संबंध सदा दैवी, श्रेष्ठ, ऊंचे संबंध मिलते हैं, तो ये चार प्रकार का सुख हमें इसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। लेकिन जब द्वापर युग में आत्मा आती है तो फिर पुण्य कर्म प्रारंभ करते हैं। पुण्य कर्म इस संसार में माने जाते हैं दूसरों को सहयोग देना, जिसमें अनेक प्रकार के दान प्रचलित हैं। कोई रक्त दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई अन्न दान करता है, समाज सेवा हम करते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, भूदान करते हैं, ये सब पुण्य कर्म माने जाते हैं। इसके द्वारा हम गरीबों को मदद करते हैं। लेकिन दान की परिभाषा और दान का पुण्य तब बनता है जब वो दान पात्र को दिया जाता है, जो सही पात्र है। आपने मानो किसी भिखारी को दान किया और उसने उस धन से शराब पी लिया, जो उसको पैसा मिला, क्योंकि ज्यादातर जो गरीब लोग होते हैं वो गरीब इसीलिए होते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी बुराई या व्यसन के आदि होते हैं और वो अपना धन उसमें ही कमा देते हैं। अब उनको धन किस लिए चाहिए होता है, क्योंकि वो अपना व्यसन पूरा करना चाहते हैं, तो या तो वो चोरी करते हैं, नहीं तो भीख मांगते हैं। और आपने दिया और जाते ही उसने उससे शराब पिया, तो वो पाप जो उसने किया वो आपका पुण्य बनने की बजाय आपका भी पाप बन गया, क्योंकि आपने सही पात्र को वो दान नहीं दिया। एक बार ऐसे ही रोटरी क्लब, बहुत क्लब्स हैं जो गरीबों के लिए इस तरह का दान करते हैं। ऐसे कैंप भी लगाते रहते हैं वो, तो उन्होंने बॉम्बे में कैंप लगाया और जितने भी झोपड़पट्टी, दुनिया की शायद भारत की सबसे ज्यादा झोपड़पट्टी बॉम्बे में होगी मैं समझती हूँ, तो उन्होंने वहां सबको उस झोपड़पट्टी में कंबल बांटे कि चलो सर्दी के समय पर ये आराम से सोएंगे। फिर ऐसा उनका नियम है कि वो बाद में उसको देखते भी हैं कि सचमुच उसका सही उपयोग हुआ या नहीं हुआ। तो 3 महीने के बाद वो फिर से उस झोपड़पट्टी में गए ये जांच करने के लिए कि सचमुच उनके कंबल लोगों ने यूज किए। तो पता चला कि वो सभी ने कंबल बेचकर अपना पैसा लिया और अपने अपनी रीति से उस पैसे को खर्च कर दिया, किसी ने भी उस कंबल को यूज नहीं किया। तो हम हमेशा अगर ऐसा भी कुछ कार्य करते हैं तो देखें कि हम सही पात्र को दे रहे हैं। और दूसरी बात, दान देने से अच्छा है, चलो आप किसी को भोजन खिलाते हैं, कितने दिन भोजन खिलाएंगे, या आप वस्त्र बांटेंगे तो कितना समय तक आप किसी को वस्त्र दे सकते हैं, उसकी एक सीमा होती है। लेकिन यदि उस पात्र को योग्य बना दिया जाए, यानी वो स्वयं ही अपना भोजन कमा सके, अगर उस लायक बना दिया जाए तो वो सबसे बड़ी सेवा है। और परमात्मा हमें ये सेवा सिखाते हैं, वो जो समाज सेवा हम करते हैं, अनेक प्रकार के दान करते हैं, वो अल्पकाल का है, थोड़े समय के लिए ही किसी को मदद करता है। लेकिन यदि आपने उसकी आत्मा में इतनी शक्ति भर दी, उसके अंदर आध्यात्मिक जागृति ले आए, उसको सक्षम बना दिया कि वो स्वयं ही अपना कार्य करके उस योग्य बन जाए, तो ये सेवा महान सेवा है, इसे सच्ची रूहानी सेवा कहा जाता है। फिर कई बार लोग इस प्रकार के जो दान पुण्य करते हैं वो नाम कमाने के लिए करते हैं, उनको समाज में अपना नाम चाहिए। कोई अस्पताल बनाता है तो वो बड़ा बड़ा अपने नाम का नेम प्लेट या अपने वो अस्पताल का नाम ही अपने नाम पर रखते हैं। कोई मंदिर बनाता है तो मंदिर की एक एक सीढ़ी पर उनका नाम खुदाया जाता है, आप देखते होंगे। अगर हमने नाम की इच्छा से वो दान किया तो उसका आधा पुण्य हमने वहीं खा लिया। फिर न सिर्फ इतना, हम वर्णन भी करते हैं उसको। तो यदि हम वर्णन करते रहते हैं, देखो मैंने ऐसा किया, मैंने इतना किया, दान के लिए तो कहा जाता है कि अगर एक हाथ से आप दान करते हैं तो दूसरे हाथ को उसका पता चले नहीं चले, दूसरे हाथ को भी उसे पता ना चले, हाँ, इसलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। फिर बाद में कहने लगे दरिया तो बहुत बड़ा होता है समुन्द्र, नेकी कर कुएं में डाल। फिर लगा कि कुआं भी बड़ा है तो नेकी कर कहां डाल, पॉकेट में डाल। तो आजकल नेकी को हम बिल्कुल भी छुपाते नहीं हैं, और इसीलिए वो थोड़ा बहुत जो हम समझते हैं हमने पुण्य किया। और खासकर जो व्यापारी होते हैं वो समझते हैं कि हम धंधे के कारण इतना झूठ बोलते हैं, हमें बोलना ही पड़ता है क्योंकि बिजनेस तो बिना झूठ बोले हो ही नहीं सकता है, हाँ, तो चलो थोड़ा भगवान के नाम पर हम दान पुण्य कर दें तो हमारा जो पाप है वो कम हो जाएगा। तो भाव उनका अलग होता है, यानी पहले वो इतना पाप कर चुके हैं कि उस पाप को कम करने के लिए, उसका कुछ अंश कम करने के लिए वो दान कर रहे हैं। तो वो पुण्य हमारा इतना जमा नहीं होता है। और मानो कई बार आपने दान किया और कुछ किसी बात को लेकर के जिसके निमित्त आपने दान किया उससे आपका कोई झगड़ा हो गया या कोई मतभेद हो गया, तो वो पुण्य के बजाय पाप हो जाएगा। पुण्य तो नहीं बनेगा अंश मात्र भी, लेकिन और ही पाप हो जाएगा। तो इसीलिए कहा कि कर्म की गति बहुत न्यारी है, बहुत ही गहन है। और स्वयं परमात्मा इस समय इस सृष्टि पर अवतरित होकर के हमें कर्मों की ये गति समझाते हैं। कई बार हम ये महसूस करते हैं कि जीवन में मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, हम तो सदा सबका अच्छा करते हैं। तो इस पर भी एक अच्छी कहानी मुझे याद आती है कि पूर्व जन्मों के किए हुए कर्म भी हम इस जन्म में कई बार उनके फल अनुभव करते हैं। तो एक बार एक राजा का बेटा और मंत्री का बेटा दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त थे, लेकिन दोनों के स्वभाव एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। जो राजा का बेटा था वो बहुत उद्दंड, बहुत ही जो भी प्रजा थी उसको तंग करने वाला, अनुशासनहीन, और जो मंत्री का बेटा था वो बहुत ईमानदार, आज्ञाकारी, बहुत सुशील स्वभाव का था। तो लोगों को आश्चर्य होता था कि ये दोनों इतने विपरीत स्वभाव के, लेकिन इनकी दोस्ती कैसे है। तो एक बार वो दोनों साथ साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में राजा के बेटे को एक बटुआ मिला। जब उसने वो बटुआ खोला तो वो भरा हुआ था रुपयों से, तो बहुत खुश हुआ। भले ही राजकुमार था लेकिन मिली हुई चीज से तो खुशी होती है। जो चीज हमें मुफ्त में मिलती है उसकी खुशी अलग ही होती है। तो उसने खुश होकर के मंत्री के बेटे को दिखाया कि देखो मुझे कितना धन मिला है। तो वो भी खुश हुआ उसके साथ में। थोड़ी दूर और आगे गए, जब रास्ते पर चल रहे थे तो मंत्री के बेटे को एक बहुत बड़ा कांटा पैर में लग गया और आर पार हो गया पैर से। तो उसको एकदम बहुत दर्द होने लगा, कांटा बड़ी मुश्किल से खींच कर निकाला, खून बहने लगा, अब उसे चला भी नहीं जा रहा था। अब वो राजा का जो बेटा था उसका तो स्वभाव ही ऐसा था, उसने उसके ऊपर व्यंग किया, देखा तू बहुत अच्छा बनता है ना, देखा क्या हुआ तेरे साथ, मेरे को भगवान ने नोटों से भरा हुआ पर्स दिया और तेरे को क्या मिला, कांटा लगा, इतना खून निकल रहा है। तो उसको ये बात बहुत चुभ गई कि एक तो मुझे पहले ही इतनी तकलीफ हो रही है और ऊपर से ये मेरा मजाक भी बना रहा है। फिर किसी भी तरह घोड़े पर बिठाकर वो उसको ले जा रहा था तो रास्ते में एक साधु की कुटिया दिखाई दी। तो मंत्री के बेटे ने कहा कि इस साधु को मैं जानता हूं और इससे मुझे बात करनी है, हम इसकी कुटिया में चलेंगे। तो वो दोनों उस साधु की कुटिया में गए। तो वहां पर इसके मन में वो बात चल ही रही थी तो मंत्री के बेटे ने जाकर उससे सवाल पूछा, हम ऐसे ऐसे आए और हम दोनों के साथ ये घटना हुई तो ऐसा क्यों होता है। तो वो साधु जो था वो त्रिकालदर्शी था। त्रिकालदर्शी माना वो किसी के भी भूतकाल में जाकर के समझ सकता था या भविष्य को भी देख सकता था, यानी किसी के जन्मों को देख सकता था, ये उसके अंदर शक्ति थी। तो उसने कहा कि ठहरो, मैं तुम दोनों के पूर्व जन्म को देखता हूं और फिर मैं इस राज को बता सकूंगा। तो उसने पहले राजकुमार के पूर्व जन्म को देखा। तो उसने देखा कि पूर्व जन्म में जो राजकुमार था वो बहुत ही दानी था, उसने बहुत अपना धन गरीबों में दान किया और उसके कारण उस समाज में उसका बहुत नाम था, उसका महत्व था, उसके कारण उसको धीरे धीरे अभिमान आ गया और उस अभिमान में ही उसने शरीर छोड़ा, यानी उसकी मृत्यु हुई और वही अभिमान के संस्कार आज उसके अंदर हैं। पर उसने दान पुण्य तो किया हुआ है तो उन पुण्य कर्मों का फल, पर क्योंकि अभी वो अभिमानवश कर्म कर रहा है तो वास्तव में उससे खजाना मिलने वाला था। उस दान के परिणाम स्वरूप, उन पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप अभी उसके लिए खजाना था, लेकिन क्योंकि वो इस जन्म में पाप कर्म करता जा रहा है तो वो खजाना कम हो करके सिर्फ उसे एक बटुआ ही मिला। लेकिन ये जो मंत्री का बेटा है वो पूर्व जन्म में अपराधी था और उसने हत्या की थी किसी की, लेकिन सफाई से जैसे बच जाते हैं ना, किसी निर्दोष को सजा मिल जाती है और दोषी बच जाता है, ऐसे उसके साथ हुआ कि वो हत्या के आरोप में पकड़ा नहीं गया, लेकिन अपने मन में तो बहुत पश्चाताप होता है कोई भी इंसान गलत काम करता है तो उसे जेल तो नहीं हुई, लेकिन मन ही मन उसने उस बात को बहुत महसूस किया कि उसने कितना गलत काम किया, उसकी वजह से उसके संस्कार अच्छे हुए, उस महसूसता से उसमें परिवर्तन आया। और आज जब उसकी मृत्यु होने के बाद ये जन्म उससे मिला तो वो अच्छे कर्म कर रहा है। तो वास्तव में वो जो हत्या की, जो किसी को उसने मौत दी, उस मौत के बदले आज उसके लिए भी मौत थी, यानी उसके लिए भी मृत्यु निश्चित थी इस वक्त, लेकिन वो सूली, उसके लिए जो सूली जैसा समय था, वो जो अच्छे कर्म कर रहा है इस जन्म में, उसका जो पुण्य मिला है उसको, उसके कारण ये सूली कांटे में बदल गई, वो दुख सिर्फ कांटे जितना ही रह गया। तो हम तो वर्तमान जन्म ही देख रहे हैं, पूर्व जन्म में हम कितने कैसे कर्म करके आए हैं, क्योंकि मनुष्य मनुष्य के रूप में ही जन्म लेता है, तो पूर्व जन्म के संस्कार आत्मा अपने साथ अगले जन्मों तक ले जाती है। आज मानो किसी ने मुझे गाली दी, हम बहुत दुखी होते हैं, इसने मुझे ऐसा कहा, क्यों कहा, जरूर मैंने पूर्व जन्म में उसको ऐसा कहा है। तो जैसे ही हम उस आत्मा के सामने आते हैं, देखो कुछ आत्माओं के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध होते हैं, सहज ही अपने आप, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन कुछ के साथ आप कितनी भी कोशिश कर लो आप अच्छे संबंध नहीं बना पाते। कारण होता है पूर्व जन्म के स्मृतियां, कहीं ना कहीं वो आत्मा आपसे मिली है और उनके और आपके बीच में कुछ गलत व्यवहार हुआ है और उसकी सूक्ष्म स्मृतियां टकराती हैं, और आप चाहते हुए भी और भले ही उनसे अच्छा व्यवहार भी करते रहेंगे, लेकिन फिर भी वो अपना हिसाब किताब पूरा करते रहेंगे। तो ये भी प्रभाव, जो पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रभाव हैं, वो हमारे वर्तमान जन्म में प्रभाव डालते हैं। लेकिन इस समय शिव बाबा हमें समझाते हैं कि चाहे जो भी हमारे पूर्व जन्मों के हिसाब किताब हैं, या वर्तमान में विकारों के वश होकर हमारे द्वारा पाप कर्म हो रहे हैं, इन सब खाते को हमें अभी यहीं समाप्त करना है, क्योंकि ये काल चक्र का अंतिम समय है और आत्मा को फिर पुनः अपने घर मुक्ति धाम में लौटना है, और उसके बाद फिर से नया चक्र शुरू होगा। तो सत्कर्म करते हुए, सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए जब हम कर्म करते हैं, श्रेष्ठ वृत्ति श्रेष्ठ भाव से या आत्मिक वृत्ति से जब हम कर्म करते हैं, तो हमारे सब पूर्व के किए हुए पाप कर्म या विकर्म विनाश होते हैं, कट जाते हैं। ईश्वर की स्मृति से, उस योग अग्नि से, जैसे अग्नि के लिए कहते ही हैं कि अग्नि में कोई भी वस्तु डालते हैं उसका स्वरूप बदल जाता है, उस रूप में वो कभी वापस नहीं मिलेगी आपको। अगर आपने सोना तपा दिया अग्नि में तो सोना शुद्ध हो जाता है, अगर आपने मिट्टी डाली है तो पक जाती है, अगर आपने आलू डाला है जो कठोर होता है वो मुलायम हो जाता है, उस रूप में कभी भी अग्नि से वो वस्तु बाहर नहीं आएगी। तो इस योग अग्नि में भी आत्मा के कर्मों का स्वरूप परिवर्तन होने लगता है, और हमारे कर्म श्रेष्ठ कर्म, पवित्र कर्म, दिव्य कर्म हो जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण होए, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी होए। वो सत्कर्म अभी हम परमात्मा से सीख रहे हैं, और यदि हम वैसे ही कर्म करते हैं तो नर से नारायण बनना और नारी से श्री लक्ष्मी बनना बहुत सहज है। तो यह थी कर्मों की गुह्य गति का संक्षिप्त ज्ञान, और आप जब आगे सेवा केंद्रों पर जाएंगे तो इस विषय में फिर और आगे सुनते रहेंगे। अभी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ओम शांति। अभी हम कुछ मिनट परमात्मा की याद में, जैसे आप रोज योग का अभ्यास करते हैं, आपको अभ्यास दिया जाता है, तो जैसे जैसे मैं विचार आपको दूंगी उस अनुसार आप अपने मन को एकाग्र करेंगे। सीधे होके बैठ जाएं सभी, स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित करें, मन को संकल्प दीजिए, मैं एक चेतनीय शक्ति, दिव्य शक्ति, आत्मा हूं, मैं अचर अमर अविनाशी हूं, मेरा निजी स्वभाव शांति है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है, इस संसार में कर्म करने के लिए मैंने शरीर रूपी साधन को अपनाया है, ये सृष्टि एक विशाल रंगमंच है, कर्म क्षेत्र है, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करती हूँ, मुझे श्रेष्ठ भाव से, श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ कर्म करने हैं, मुझ आत्मा का निज धाम परम धाम शांति धाम है, जो सूर्य चांद तारों से भी पार अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म महतत्व है, जहां सर्वत्र सुनहरी लाल प्रकाश है, संपूर्ण शांति है, यही मुक्ति धाम है, निर्वाण धाम है, यहां मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में हूं, ज्योति बिंदु रूप में मैं इस देह और देह के सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त सच्ची मुक्ति में हूं, और परम पिता परमात्मा शिव बाबा के अति समीप हूं, शिव बाबा भी मेरे ही समान ज्योति बिंदु रूप हैं, वो शांति के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, कल्याणकारी हैं, परम पवित्र हैं, आनंद के सागर हैं, शिव बाबा की शक्तियां मैं स्वयं में महसूस कर रही हूं, उनकी याद से मेरा मन पवित्र और निर्मल होता जा रहा है। मैं अपनी निजी शांति को प्रेम स्वरूप को शक्ति स्वरूप को अनुभव कर रही हूं। शिव बाबा की शक्तियां जब मेरे साथ हैं तो मुझे अपने विकारों पर विजय पाना, स्वयं में परिवर्तन लाना सहज है। बाबा ही मुझे श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति देने वाले हैं। मेरे सच्चे सच्चे माता पिता शिक्षक सतगुरु हैं, और अब मैं पुनः स्वयं को इस साकार जगत में अपने इस भौतिक शरीर में अनुभव कर रही हूं। अपने सारे दिन के कार्य व्यवहार में मैं शांति, प्रेम और सद्भावना बनाए रखूंगी। ओम शांति शांति।